तो दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, इन दिनों टीवी पर आइडेंटिटी के बारे में बहुत बड़ी चर्चा हो रही है और टीवी शोज भी हम SBS टीवी पर दिखा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों न हम भी बातें करें जेनेटिस्ट डॉक्टर नितिन सक्सेना के साथ, जो कि DNA में एक्सपर्ट हैं। नमस्ते डॉक्टर सक्सेना।
नमस्कार।
सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में ये बताइए कि DNA क्या है।
DNA जो है वो इसको बोलते हैं, इसका पूरा फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो DNA है, इसमें सारे हमारी जो जिंदगी की और लाइफ की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी कोड होती है इस DNA के से।
अच्छा।
जो भी प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, सब में DNA होता है। और DNA जो है इनका ब्लू प्रिंट है लाइफ का।
अच्छा।
सारे ऑर्गेनिजम्स का। और जो DNA है ये हमारे ह्यूमंस के बीच में 99.5% सिमिलर है।
अच्छा।
जी हाँ। और जो 0.5% डिफरेंस है, दैट मेक्स अस यूनिक व्हाट वी आर।
ऑलराइट। तो इस 5% जो आपने बताया,
0.5%
से हाँ, क्या ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो मूलतः कहाँ से आए? भाई वो साउथ एशिया के ही थे या वो यूरोप से थे? क्या ये पता लगाया जा सकता है?
पता लगा जा सकता है, क्योंकि क्या है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था 2003 में, उस वो कंप्लीट हुआ 2003 में, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने काफी मैपिंग करी है लोगों की, दूसरे दूसरे रीजन्स और देशों से लोगों की, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है
जी।
और इसके क्या है कि इससे डेटाबेस क्रिएट किया गया पूरा। और जब हम DNA को एक मेथोडोलॉजी बोलते हैं सीक्वेंसिंग, जिससे कि हम DNA के सारे चार बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन को सीक्वेंस करते हैं, तो ये मिलियंस ऑफ बेस पेयर जब सीक्वेंस होते हैं तो ये हम बता सकते हैं उसके बेसिस पे कि हमारी एंसेस्ट्री क्या है, हमारे पूर्वज लोग कहाँ से आए हैं पॉसिबली। तो ये लिंकेज जो है ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस डेटाबेस में होना बहुत जरूरी है।
अच्छा।
जी
तो ये बताइए कि ये DNA टेस्ट कैसे किया जाता है, क्या टेस्ट किया जाता है इसमें?
सो DNA टेस्टिंग में क्या है कि काफी चीजें टेस्ट होती है, जैसे अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है तो उसमें क्या होता है, जो मैटर्नल लीनिएज अगर हमको एस्टैब्लिश करनी है, मदर से डॉटर को जो ट्रांसमिशन होता है DNA का, वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA को एनालाइज किया जाता है। दूसरा, DNA जो एनालाइज करते हैं वो जो 0.5% मैं आपको बता रहा हूँ जो डिफरेंस होता है, वो बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट, STR, जो कि क्या है मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है ह्यूमन जीनोम में। लेकिन क्या है कि इसका रिपीटेशन जो है वो सिमिलर रहता है जो लोग रिलेटेड हैं, और काफी डिफरेंस होता है इन रिपीट्स में जब लोग अनरिलेटेड होते हैं।
ठीक।
तो उस वजह से हमें क्या है कि पूरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मिल सकता है कि हमारा लिंकेज जो है हमारी मदर के या फादर के साथ में है, या हमारे डैडी हैं वो वही हैं या नहीं है।
अच्छा।
तो ये एस्टैब्लिश क्लियरली हो सकता है इस पे। और फिर दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम, जो कि फादर से जो DNA होता है। तो क्या होता है कि जो DNA है हमारे जो बच्चों में है वो आधा मदर से मिलता है, आधा फादर से मिलता है।
बिल्कुल।
तो जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ एंड हाफ रहते हैं। इस वजह से क्या है कि जो हम जैसे हमारे लुक्स होते हैं, जैसे हम बिहेव करते हैं, जो जेनेटिक ट्रेट्स हम एक्वायर करते हैं, वो हमारा हाफ एंड हाफ शेयर की वजह से ना काफी विजिबल रहता है वो ट्रेट्स। तो इस वजह से हम काफी आइडेंटिटी जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये मेथोडोलॉजीज हैं DNA में। फिर क्राइम डिटेक्शन सीन होता है। क्राइम डिटेक्शन सीन भी क्या है कि DNA मेथोडोलॉजी जो है वो वही जो मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, फिंगरप्रिंटिंग DNA इसको बोलते हैं। और इस फिंगरप्रिंटिंग की वजह से क्या है कि बेसिस को काउंट किया जाता है सीक्वेंसिंग के बाद, और फिर उनकी आइडेंटिटी जो है वो कंपेयर करी जाती है, और फिर जब आइडेंटिटी कंपेयर करी जाती है उनका मैच स्टेटिस्टिकली डिफाइन किया जाता है कि ये अगर आदमी ने कोई मर्डर किया है तो उसके जो फिंगरप्रिंट से हमने DNA लिया है, या जो उसके हेयर से हमने DNA लिया है, या स्किन से, या स्वाब से, उन सारे DNA से एस्टैब्लिश कर सकते हैं लिंकेज क्लियरली
क्राइम का। जी बिल्कुल। तो इससे तो फैमिली ट्री का भी पता लगा सकते हैं जो आपने कहा था।
बिल्कुल। फैमिली ट्री का पूरा इस तरह से पता लग सकता है, क्योंकि क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो सबसे ज्यादा रिलायबल है फैमिली ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए. एसटीआर रिपीट्स जो मैंने बताया 0.5 डिफरेंसेस जो डीएनए में होते हैं वो भी एसटीआर रिपीट्स भी यूज कर सकते हैं हम लिनिएज एस्टेब्लिश करने के लिए.
अच्छा.
तो जो फैमिली ट्री है इसके कई कई तरह से डीएनए को हम यूज कर सकते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए कि हमारे पूर्वज लोग कहाँ से आए, हमारी जेनेटिक लिंकेज कितनी दूर तक हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं इसको. लेकिन इसका एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है कि उससे रिलेटेड डीएनए डेटाबेस में उसका होना बहुत जरूरी है.
हाँ.
क्योंकि उससे उसके बिना हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं.
जी बिल्कुल.
ये
तो अगर कोई और रिश्तेदारों ने पूर्वजों ने भी करवाया होगा तो वो कॉमन डेटाबेस मिल जाएगा.
जी हाँ, exactly.
कंपैरिजन के लिए.
हाँ, कंपैरिजन.
और
आप क्या, डेटाबेस तो बहुत इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली.
हाँ?
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डीएनए टेक्नोलॉजी है यू नो, इसका जो डेवलपमेंट है वो काफी आगे तक हो रहा है.
तो ये ऐसी भी बात है कि करीब 2 लाख साल पहले मानव जाति शुरू हुई अफ्रीका से, तो क्या सभी इंसानों में एक थोड़ा सा अफ्रीका का भी ट्रेस मिलता है?
जी हाँ, सारे लोग क्या है कि once upon a time they all came from Africa.
हाँ.
ये तो क्लियर है. और इसमें क्या है कि इंडियंस को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं.
नहीं.
कि 60,000 years ago इंडियंस also migrated from Africa. So yeah, that there is a clear evidence. क्या है कि जो इंडियन लिनेज का जो establishment है, अभी 2016 का एक पेपर निकला हुआ है और इस पेपर में एक्चुअली बताया कि जो इंडियन मिक्सिंग है, पहले सोचते थे कि सिर्फ दो सॉर्ट ऑफ एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से क्रिएट हुआ है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 5 डिफरेंट एंसेस्ट्रल पॉपुलेशंस हैव पार्टिसिपेटेड इन क्रिएटिंग द इंडियन मिक्स.
तो कौन सी हैं ये पॉपुलेशंस डॉक्टर साहब?
हाँ, सो ये इनकी जो पॉपुलेशंस हैं वो नॉर्थ इंडियन लिनिएज है, उसमें एक साउथ इंडियन एंसेस्ट्रल लिनिएज है, फिर उसमें ऑस्ट्रेलियन एशियन लिनिएज है, और एक है इंडो बर्मीज और एशियन बर्मीज लिनिएज. तो 4 लिनिएज का जो मिक्स है वो हुआ है. और उसमें यह है कि जो सबसे डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है वो जिसका कोई भी लिंक आउटसाइड किसी पॉपुलेशन से है नहीं, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड के जो लोग हैं. सबसे डिस्टिंक्ट जो ओंजी लोग हैं.
हाँ.
वो ओंजी लोग जो है उनका लिंक जो है किसी बाहर की पॉपुलेशन से एस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी.
बहुत ही ये डीप साइंस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. इसका हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए किया जा रहा है. बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है, फैमिली ट्री के बारे में. क्या इसका उपयोग किसी नेगेटिव बात के लिए भी किया जा रहा है?
नेगेटिव क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं? लोग क्या है कि जो एम्ब्रियो को जो बाहर ग्रो कर रहे हैं, जो डीएनए मैनिपुलेशन कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं डीएनए मैनिपुलेशन की, क्या एथिकली तो अलाउड है नहीं अभी इस समय, लेकिन जो लोग ना जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं ह्यूमंस में, जो कि जेनेटिक मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं प्लांट्स में, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं. स्पेशली जो ह्यूमन क्रॉप्स जो हम जो ग्रो कर रहे हैं उसका क्या है कि जो लॉबी है जेनेटिक मैनिपुलेशन की वो बहुत स्ट्रांग है. तो उसके प्रॉब्लम्स ये हैं समय के जो जो सीड्स उगा रहे हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए वो क्या है कि वो टाइम्ड है पूरी तरह.
हाँ.
और जो कंपनीज बेच रही हैं सीड्स को हाई क्रॉप के नाम पे, वो दूसरे साल हम उसको उगा नहीं सकते हैं. वो एक साल के लिए क्रॉप होती है, दूसरे साल
नहीं
उगा नहीं सकते आप उसको, आपको वापस खरीदना पड़ेगा.
तो
इसके प्रॉब्लम एथिकल ह्यूमंस में भी है, क्योंकि जेनेटिक मैनिपुलेटेड क्रॉप्स का जो कंजम्पशन है वो भी एथिकली अलाउड नहीं है इस समय पूरी तरह. तो इसके जो डीएनए के इम्प्लीकेशन है ह्यूमंस और प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म सब लेवल पे हैं, ये हमारे पूरे इकोसिस्टम के लेवल पे हैं.
जी, आपने बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है और मुझे लगता है कि लोगों को इससे काफी फायदा होगा. आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी कुमल जी. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी.
माय प्लेजर.